एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1976 की फिल्म चित चोर का गीत तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले। येसुदास और हेमलता की आवाजें, गीत और संगीत रविंद्र जैन के। कैसे जुड़े रविंद्र जैन, येसुदास और हेमलता फिल्म चित चोर से? येसुदास को राजश्री की दहलीज तक पहुंचाने में संगीतकार सलील चौधरी का क्या योगदान था? रविंद्र जैन ने येसुदास की शान में एक बहुत बड़ी बात कह दी थी, वो बात कौन सी थी? रविंद्र जैन संगीतकार बनने से पहले ही हेमलता से 100-150 गीत गवा चुके थे, इसका क्या राज है? प्रस्तुत गीत की रिकॉर्डिंग लाजवाब होने के बावजूद हेमलता दिन भर क्यों रोई? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है, वाचन और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। ताराचंद बड़ाजात्या द्वारा स्थापित राजश्री प्रोडक्शंस ने फिल्म जगत को एक से एक सुंदर फिल्में दी हैं। आज हम राजश्री की 1976 की फिल्म चित चोर के गीत संगीत से जुड़ी बातें बताने जा रहे हैं। इस फिल्म से पहले राजश्री के बैनर तले 1962 से लेकर 1975 तक जिन उल्लेखनीय फिल्मों का निर्माण हुआ वे हैं आरती, दोस्ती, सूरज, तकदीर, जीवन मृत्यु, उपहार, पिया का घर, सौदागर, हनीमून और गीत गाता चल। राजश्री की फिल्मों में संगीत देने वाले संगीतकारों में जो सर्वोपरि हैं, वो हैं रविंद्र जैन जी। चित चोर से पहले वे इस बैनर के लिए सौदागर और गीत गाता चल फिल्मों में संगीत दे चुके थे और 1976 की दो फिल्मों चित चोर और तपस्या में संगीत दे रहे थे। सौदागर रविंद्र जैन साहब के कैरियर का पहला ब्रेक था। हालांकि उनकी पहली फिल्म कांच और हीरा थी, पर उन्हें पहचान सौदागर से ही मिली। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि जब राजश्री की फिल्मों में स्थापित संगीतकार जैसे कि रोशन, शंकर जयकिशन, सलील चौधरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उषा खन्ना संगीत दे ही रहे थे, तब रविंद्र जैन जैसे नौसिखिए संगीतकार को ब्रेक देने का ख्याल ताराचंद जी को कैसे आया? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और रविंद्र जैन साहब के संघर्ष के दिनों में झांकना होगा। 70 के दशक के शुरू में रविंद्र जैन अपने बड़े भाई शंकर और अपने मित्र राधेश्याम, जो फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित होना चाहते थे, इन तीनों ने कलकत्ते से मुंबई की तरफ रुख किया। दरअसल वे निर्माणाधीन फिल्म लोरी के गाने मुंबई में रिकॉर्ड करने के लिए गए थे। रविंद्र जैन के लिखे और संगीतबद्ध किए हुए गीत की रिकॉर्डिंग हुई, जिन्हें गाया लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और मुकेश जैसे बड़े गायकों ने। लेकिन अफसोस कि फिल्म नहीं बनी। उन्हीं दिनों बंबई में रहते हुए राधे श्याम जी के घर पर रविंद्र जैन जी की मुलाकात हुई अभिनेता संजीव कुमार साहब से। जब रविंद्र जैन ने संजीव कुमार से काम दिलाने की मदद मांगी तो संजीव कुमार ने अपनी निर्माणाधीन फिल्म पारस के सेट पर उन्हें आ जाने को कहा ताकि वे उनकी मुलाकात फिल्मकार रमेश सिप्पी से करवा सकें। साल था 1971 और जगह थी देवलाली। रविंद्र जैन की धुनों से सिप्पी साहब इतने प्रभावित हुए कि फिल्म पारस में ही उनका एक गीत रख लिया। हालांकि फिल्म के संगीतकार के रूप में केवल कल्याण जी आनंद जी का नाम ही गया। इसी समय रविंद्र जैन को बी ग्रेट फिल्म कांच और हीरा में संगीत देने का मौका मिला, जिसके निर्माता थे सुदर्शन। मुंबई में रहते हुए लोगों से मिलना जुलना जारी रहा। एक बार राधे श्याम जी के दोस्त मुरली हरि बजाज के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में रविंद्र जैन ने बहुत सारे गाने गाए। उस पार्टी में हास्य कवि रामजी मनहर भी मौजूद थे, जो रविंद्र जैन से इतने प्रभावित हुए कि उनकी मदद करनी शुरू कर दी। और राजश्री के ताराचंद जी के साथ और रामानंद सागर साहब के साथ भी उनकी मुलाकात करवा दी। रविंद्र जैन की प्रतिभा, उनके ज्ञान और पांडित्य से प्रभावित हुए बिना बड़ा जात्या जी नहीं रह सके और उनसे उन्होंने वादा किया कि जब भी कभी ऐसे किसी विषय की फिल्म बनेगी तो उन्हें वे मौका जरूर देंगे। एक ही साल के अंदर वो मौका आ गया जब बंगाल की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी पर सौदागर फिल्म की योजना बनी। बंगाल से ताल्लुक रखने की वजह से यानी कि बांग्ला साहित्य संस्कृति और संगीत की गंभीर समझ रखने की वजह से रविंद्र जैन जी को सौदागर मिल गई। यहाँ से राजश्री और रविंद्र जैन का जो साथ शुरू हुआ वो एक लंबे समय तक चला और एक से बढ़कर एक म्यूजिकल फिल्मों का उपहार हमें मिला जिनमें चित चोर भी एक मील का पत्थर है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पार्श्व गायक येशुदास की, जिनका रविंद्र जैन और राजश्री प्रोडक्शंस दोनों के साथ संबंध फिल्म चितचोर से ही शुरू हुआ था। येशुदास को हिंदी फिल्म संगीत जगत में लाने का श्रेय सलील चौधरी को जाता है। हुआ यूं कि येशुदास ने दक्षिणी फिल्मों में अपना पार्श्व गायन 1961 में शुरू किया था। 1965 में मलयालम फिल्म निर्देशक रोमू करियत ने सलील चौधरी की हिंदी और बंगला धुनों से प्रभावित होकर उन्हें अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म चेम्मीन में संगीत देने का मौका दिया और इस प्रकार सलील चौधरी के सामने मलयालम फिल्म उद्योग के द्वार खुल गए। इस फिल्म में सलील दा ने येशुदास से कई गीत गवाए जो काफी मशहूर हुए और इस फिल्म को मलयालम फिल्मों के इतिहास का एक मील का पत्थर कहा जाता है। इस फिल्म के बाद अगले 10 सालों तक सलील दा ने जितनी भी मलयालम फिल्मों में संगीत दिया उन सभी में येशुदास को गवाया। इसी दौरान येशुदास को कुछ बी और सी ग्रेड हिंदी फिल्मों में गीत गाने का मौका मिला, जैसे कि 1971 की जय जवान जय किसान, 1975 की रोशनी और अंधेरा और इसी साल यानी 1975 की बागी लुटेरा। इन तीनों फिल्मों के संगीतकार दक्षिण के थे। इसके बाद आया 1976 का साल जब एक बार फिर सलील चौधरी और येशुदास का साथ हुआ, लेकिन किसी मलयालम फिल्म के लिए नहीं बल्कि हिंदी फिल्म छोटी सी बात के लिए। बी आर चोपड़ा निर्मित और बासु चटर्जी निर्देशित इस फिल्म में येशुदास ने आशा भोसले के साथ नायक अमोल पालेकर के लिए गीत गाया जनेमन जनेमन तेरे दो नयन। और उधर बासु चटर्जी उन्हीं दिनों राजश्री फिल्म चितचोर का भी निर्देशन कर रहे थे, लेकिन जब फिल्म चितचोर में अमोल पालेकर के पार्श्व गायन के लिए किसी ऐसे गायक की तलाश हुई जिनकी आवाज अमोल पालेकर की नर्म और मृदुभाषी व्यक्तित्व के लिए सटीक हो, तब बासुदा ने रविंद्र जैन साहब को येशुदास से मिलवा दिया। ऑडिशन हुआ और जब पर्दे पर येशुदास की आवाज अमोल पालेकर पर बेहतरीन तरीके से फिट हो गई तब ताराचंद बरजात्या और रविंद्र जैन दोनों के चेहरे खिल उठे। उन्हें चित चोर के विनोद की आवाज मिल गई थी। यहाँ से रविंद्र जैन और येशुदास का जो साथ शुरू हुआ उस संगम से उत्पन्न हुए एक से एक लाजवाब गीत। भले ही येशुदास को हिंदी फिल्मों में लाने का श्रेय सलील चौधरी को जाता है, पर उन्हें सबसे अधिक गवाने का श्रेय निस्संदेह रविंद्र जैन को जाता है। बरसों बाद एक साक्षात्कार में जब रविंद्र जैन जी से ये पूछा गया कि अगर कुछ समय के लिए उनकी आंखों की रोशनी वापस मिल जाए तो वो किन्हें देखना चाहेंगे, तो उन्होंने जो नाम बताए उनमें एक नाम येशुदास जी का भी था। फिल्म चितचोर के लिए गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा गीत के लिए येशुदास को सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड मुकेश को मिला था कभी कभी मेरे दिल को ख्याल आता है गीत के लिए। फिल्म चितचोर में कुल 4 गाने थे, येशुदास की एकल आवाज में 2 गीत, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा और आज से पहले आज से ज्यादा, और येशुदास और हेमलता की युगल आवाजों में थे 2 गीत, जब दीप जले आना और तू जो मेरे सुर में। तो दोस्तों ये चारों गीत एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हुए भी इतने सुंदर बने कि कह पाना मुश्किल है कि कौन किससे बेहतर है। तो आज की इस कड़ी के लिए हमने जिस गीत को चुना है उसके चुनने के पीछे कारण बस यही है कि इस गीत के रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक यादगार किस्सा है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद हम आपको बताते हैं। उससे पहले पार्श्व गायिका हेमलता की कुछ बातें हो जाएं। फिल्म चितचोर हेमलता का भी पहला बड़ा ब्रेक था, हालांकि वो इससे पहले रविंद्र जैन के निर्देशन में बनी फिल्म फकीरा का शीर्षक गीत गा चुकी थी और कुछ अन्य संगीतकारों के गीतों में बच्चों की आवाज भी बनी थी। 1969 की फिल्म विश्वास में कल्याण जी आनंद जी के संगीत में मुकेश के साथ ले चल मेरे जीवन साथी काफी हिट हुआ था, लेकिन हेमलता को इससे खास फायदा नहीं हुआ था। हेमलता और रविंद्र जैन का साथ किस तरह शुरू हुआ, इस बारे में हेमलता जी ने विविध भारती के एक साक्षात्कार में विस्तारित रूप से कुछ यूं बताया था। दद्दू मेरे बाबा के शिष्य हुआ करते थे कलकत्ता से, सो उनके क्लास के बाद वो मुझसे अपने गाने गवाया करते थे और वो मुझे हर गीत के लिए 1 रुपया देते थे। पहले 50 पैसे रेट था, फिर मैंने रेट बढ़ा दिया। बर्फ के गोले महंगे हो गए थे ना, वो सिखाते थे मुझे अपनी बंदिश। जब बम्बई में जाकर मुझे लोगों को अपनी आवाज़ सुनानी पड़ती थी तो मैं उन्हीं के ये सब गाने गाती थी। यूँ तो मुझे फिल्मों के गाने सब याद रहते थे, रवि साहब के, मुकेश साहब के और लता जी के गानों का तो कोई हिसाब ही नहीं था, लेकिन मैं ऑडिशन के लिए दद्दू के ही गाने गाती थी। दद्दू इस इंडस्ट्री में 70 के दशक के शुरू में आए, तब तक 100-150 गाने उनके मैं गा चुकी थी। तो दोस्तों, सुना आपने कि हेमलता और उनके दद्दू यानी कि रविंद्र जैन का बहुत पहले से ही साथ रहा है। इसलिए जब फिल्म चितचोर में जरीना वहाब के किरदार के लिए एक नई गायिका की आवाज़ की बात हुई, तब रविंद्र जैन साहब ने अपनी गुरु पुत्री हेमलता की आवाज़ ही चुनी। अब आते हैं तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले गीत पर। इस गीत के लिए हेमलता को उस साल सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनके गाए फिल्म के दोनों गीत विशुद्ध शास्त्रीय संगीत आधारित होने के बावजूद जन साधारण में बेहद लोकप्रिय हुए। जब दीप जले आना गीत अगर राग यमन पर आधारित था तो तू जो मेरे सुर में आधारित था राग पीलू पर। हेमलता और येसुदास ने निस्संदेह दोनों गाने बेहतरीन गाए, लेकिन सबसे अधिक श्रेय रविंद्र जैन को जाता है। इन दोनों गीतों में उनका काव्य बेहतर है या संगीत, बताना मुश्किल है। स्तरीय बोल और स्तरीय संगीत को किस तरह से क्लास और मास दोनों में लोकप्रिय बनाया जा सकता है, ये दो गीत इसी के उदाहरण हैं। फिल्म चितचोर के एल्बम के लिए रविंद्र जैन साहब की तारीफ करने वालों में लता मंगेशकर, आशा भोसले, हृदयनाथ मंगेशकर और सुधीर फड़के जैसे गुणी कलाकार शामिल थे। तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़े एक दिलचस्प किस्से का हेमलता जी ने उसी साक्षात्कार में जिक्र किया था। हुआ यूं कि इस गीत की रिकॉर्डिंग के दिन हेमलता जी स्टूडियो लेट पहुंची। किस कारण लेट हुई थी इस पर तो हेमलता जी की याददाश्त जवाब दे गई, पर किसी कारण उन्हें बहुत देर हो गई। जब वो स्टूडियो पहुंची तब वहां सभी लोग आ चुके थे, येसुदास जी भी उनकी राह देख रहे थे। रविंद्र जैन जी ने हेमलता से कुछ नहीं कहा, बस रिकॉर्डिंग शुरू करवा दी। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद हेमलता दद्दू के पास गई माफ़ी मांगने, तो दद्दू ने कहा कि अगर तुम मेरे गुरुजी की बेटी नहीं होती तो आज वापस भेज देता। अचानक दद्दू के मुख से ऐसी कटु बात सुनकर हेमलता को ज़बरदस्त चोट लगी। उनकी आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। उन्हें अपने दद्दू पर बहुत अभिमान हो गया, ये सोचकर कि वो उन्हें सिर्फ इसलिए गवाते हैं क्योंकि वो उनके गुरु की बेटी हैं। वर्मन दादा, कल्याण जी भाई, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, इन सभी ने तो उन्हें गवाया है, तो फिर दद्दू ने ऐसा क्यों कह दिया। हेमलता जी ने बताया कि उन्हें उस दिन इतना बुरा लग रहा था कि वो घर वापस आकर भी दिन भर रोती रहीं। उनका मन अस्थिर था। अगले ही दिन वो दद्दू के पास वापस गईं और उनसे जाकर कहा कि देर से आने के लिए अगर आप मुझे बाहर निकाल देते तो मुझे एक सबक मिलता, बुरा नहीं लगता, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि अगर गुरु की बेटी नहीं होती तो बाहर निकाल देता। दद्दू यानी रविंद्र जैन साहब का गुस्सा तो कब का उतर चुका था। उन्होंने हेमलता के सर पर प्यार से हाथ रखकर कहा और बड़े प्यार से कहा कि देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे लिए सारे संगीतकार इंतज़ार करेंगे, तुम नहीं आओगी तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ये सुनकर हेमलता जी के दिल पर जो बोझ था वो उतर गया। चितजोर के बाद बरसों तक रविंद्र जैन ने हेमलता से एक नायाब गाने गवाए। दोस्तों, साल 2003 में राजश्री प्रोडक्शंस ने चितचोर फिल्म का रीमेक बनाया मैं प्रेम की दीवानी हूँ शीर्षक से। ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन और करीना कपूर जैसी जबरदस्त स्टार कास्ट और अनु मलिक जैसे मंजे हुए संगीतकार होने के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी। दर्शकों ने और श्रोताओं ने अब तक उसी सीधे सरल चितचोर को ही याद रखा है और याद रखा है रविंद्र जैन, येसुदास और हेमलता के उन सुमधुर गीतों को। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से जुड़े अफसाने को लेकर हम होंगे हाजिर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।
एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।